حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاه، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صلوات نائب فرمائیے محمد علی آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے تمام مرحومین کو اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ صلوات نائب فرما دیجیے. سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایزان محترم، کل ہم نے صرف موضوع کا تعارف کرایا تھا، آج انشاءاللہ وارد ہوں گے بحث میں، داخل ہوں گے گفتگو میں. بس گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، تاریخ کا معاملہ ہے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے پڑھنے والے کا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو آج کل مجلس کے لوازمات سمجھی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی. آج کل کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ ایسا نہیں تھا. آج کل کچھ چیزیں ایسی جو مجلس کے لوازمات میں شامل ہیں، اگر وہ نہ ملے تو میری مجبوری کو قبول کر لیجیے، معاف کر لیجیے، یعنی قبول کر لیجیے گا، میری مجبوری کو سمجھ لیجیے گا، معذرت قبول کر لیجیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تاریخ میں تسلسل ہوتا ہے نا، ایک تاریخ پڑھنی ہے مجھے تو اس میں تسلسل ہے. تو اکثر ایسا بھی ہوا میرے ساتھ، جناب ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شہرت سن کے کچھ لوگ مجلس میں پہلی بار آ گئے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے گئے. تو باہر لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا ہم سمجھے تھے مجلس ہو رہی ہے. اب یہ ذرا سا فرق رہ گیا کراچی میں لاہور میں، کراچی والے فوراً اس جملے کا مزہ لے لیتے، آپ نے ذرا دیر لگائی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. جزاک اللہ، چلے جناب، آپ لوگ دل میں سمجھ لیتے ہیں، دماغ میں سمجھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے. خیر، تو گزارش یعنی کرنے کا مقصد تھا، گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ان کو، بھائی ہم تو سمجھے تھے مجلس ہو رہی ہے، مطلب ان کے خیال میں میں مجلس نہیں پڑھ رہا تھا، میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. تو یہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. بزرگ گواہ ہیں، ہمارے بزرگ علماء مجالس پڑھتے تھے، ڈیڑھ ڈیڑھ دو گھنٹے پڑھنے مجلس پڑھ، ہاں جب خود تھک جاتے تھے تو صلوات بھجوا دی، پانی پی لیا. لیکن ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ارتقاء ہوتا ہے نا، ارتقاء ہونا چاہیے، مجالس میں بھی ارتقائی سفر ہے، مگر مثبت انداز میں، منفی نہیں، مثبت انداز کا سفر اچھا لگتا ہے. مثبت بات پہ، مثبت اچھی بات پہ، اپنی باتیں کرنے کو بہت ہے، دوسری طرف کیوں جائیں ہم، کس لیے جائیں، ہمارے پاس اپنا بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، ہم وہ پڑھتے رہیں گے الحمدللہ. پر کوشش یہ، اچھا اس موضوع اور پھر انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو جوان نسل ہے اس کو نالج، اس کے پاس معلومات پہنچے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات افسوس ہوتا ہے، بہت ہی بدیہی، یعنی سامنے کی باتیں بھی نہیں معلوم ہوتی اور وہ سوال لے کے آ جاتے ہیں بچے، بالکل سامنے کی بات، جو ہم بچپن میں تھے تو کوئی ہم سے وہ سوال کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا، جانتے تھے کہ یہ مومنین کے بچے کیسا جواب دیں گے یہ. لیکن اب تھوڑا سا فرق پڑ گیا. تو اس لیے گزارش ہے کہ تاریخ کا ساتھ رکھیں، اس تاریخ میں بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، بہت مسائل حل ہوتے ہیں. پھر تاریخ، دو منٹ تاریخ پر بات کر لیں. کہ یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم اس کے بغیر نہیں ہے. ہر علم تاریخ کا محتاج ہے. کیسے؟ آپ کوئی بھی علم اپنے ذہن میں لے آئیے. طب، جب طب پہ بات ہوگی تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ طب کا علم کہاں سے آیا، ہے نا؟ تاریخ. جغرافیہ کا علم، بھائی سب سے پہلے کس نے جغرافیہ کی طرف توجہ دی؟ پھر تاریخ، حکمت، کیمیا، طبعیات. اب میں اردو میں نام لے رہا ہوں بھائی، انگلش میں ڈر لگتا ہے غلط نہ ہو جائے، تلفظ مشکل ہو جاتی ہے. چلو آج بھیجیے محمد آل محمد پر. حدیث کی تاریخ ہے. کب سے یہ علم شروع ہوا؟ تاریخ جہاں پہ آ گیا کب سے یہ شروع ہوا؟ تاریخ شروع. فقہ کی تاریخ، تاریخ فقہ، اس کی ایک تاریخ ہوگی. کوئی بھی علم اٹھا لیا، حتیٰ کہ تاریخ قرآن کریم بھی ہے. تاریخ وہ ایک بڑا علم، وہ اتنا بڑا علم ہے جس کی کوئی حد نہیں. آیات پہ بحث ہے، مکی مدنی پہ بحث ہے، مفہوم پہ بحث ہے. وہ تاریخ قرآن کریم، کیسے نام کیسے ہوا قرآن کریم، کس نے نام رکھا، اللہ کی طرف سے یہ نام آیا یا بندوں نے یہ نام رکھا، ایک تاریخ ہے. ایک اشارہ دے رہے ہیں آپ کو کہ کوئی علم دنیا کا ایسا نہیں جس کی تاریخ نہ ہو. آپ حساب کتاب کے علوم کو لے لیجئے، بینکنگ تاریخ رکھتی ہے کمپنی، ہے نا، تاریخ رکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوئی بھائی، ایک سارا حساب کتاب کی تاریخ ہے. اب یہ جتنے بھی کے حساب کتاب کے علوم، میتھمیٹکس کے جو بھی علوم ہیں، جیسے بھی ہیں، اکاؤنٹنسی ہے، یہ سب اس کی ایک اپنی تاریخ. یعنی جوں جوں انسان کی، یعنی انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے، علوم بھی بڑھتے چلے، ہر چیز کی ایک تاریخ. تو تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ ہر میدان میں اس تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم عزا خانے میں بیٹھے ہیں، اس عزا خانے کی تاریخ. ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس کی تاریخ. ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مرثیے کی تاریخ. ہم نوحے خانی کر رہے ہیں، نوحے خانی کی تاریخ. سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ کہ ہر تاریخ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. تاریخ کے بغیر ہر علم ادھورا ہوگا. پہلے اس علم کی تاریخ معلوم کی جائے گی، بھائی یہ ہے کب سے آیا، کہاں سے آیا، اس کا بابا آدم کون تھا، کہاں سے شروع. ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاریخ پہ تھوڑی سی گرفت نہ صحیح، ابتدائی معلومات، اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے انسان کو تاکہ دوسروں کو جواب دینے میں بڑی. یاد رکھیے، تاریخ کا طالب علم کبھی کسی سے مار نہیں کھا سکتا کسی بھی میدان میں. یاد رکھیے، نہیں مار سکتا. کیوں؟ پوری تاریخ اس کے ذہن میں ہوتی ہے نا. وہ ایک سوال نہیں، ایک سوال کے 10 جواب دے دے گا، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، کیسے تو مانو گے، جواب دے دے گا. بس صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بس اب تاریخ کعبہ، اس کی بھی تو ایک تاریخ ہوگی نا بھائی. کب بنا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنا، کیا کیا ہوتا رہا اس کے بعد، بننے کے بعد کیا کیا ہوتا رہا، پوری تاریخ ہے نا. آج تک کی کعبے کی تاریخ ہے. ہم نے عرض کیا 22 سال پہلے پڑھا تھا، کتاب بھی چھپ گئی، لیکن پھر ہمارے دوستوں نے ہمیں حکم دے دیا کہ ایک نسل بدل گئی، ایک پیڑھی بدل گئی، پھر پڑھ دیجئے. اور یقین ہے کہ جب پڑھیں گے دوبارہ تو بہت سارے مطالب نئے سامنے آتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. اب آئیے بات کو شروع کرنے میں چاہتا تھا 2 منٹ ہی گزار لوں تاکہ جو ہمارے مومنین شبے میں تھے کہ پتہ نہیں 8:45 بیٹھیں گے کہ 9 بجے، وہ سب آ گئے ہیں. اب آپ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، اس وقت کی دعا جب جناب ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑا ہے، کہاں بے آب ہو گیا وادی، کوئی آبادی، کچھ آبادی کیا، پرندہ بھی نہیں اوپر سے گزرتا. پرندہ کیوں نہیں گزرتا؟ پرندے وہاں سے گزرتے ہیں جہاں نیچے سبزہ ہو یا پانی ہو. تو یہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، بے آب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں صرف سنگلاخ پہاڑ ہیں چاروں طرف. ان پہاڑوں کے بھی تاریخی نام ہیں، یہ پہاڑوں کے راستے ہیں. یہ راستے، یہ پہاڑ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شمال کی طرف سے آ رہے ہیں، عراق اور شام کی طرف سے. وہ اس وقت صرف شام کہلاتا تھا. شام کی طرف سے یہ پہاڑی سلسلہ آ رہا ہے جو آتے آتے مکے سے ہوتا 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 جدے پہ ختم ہو گیا. یہ بھی شمالی پٹی سے آ رہا ہے. باقی 3 طرف کیا ہے اس کے؟ پانی ہی پانی. اسی لیے کہتے ہیں جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے. حجاز محدود علاقہ ہے. حجاز میں 3 آبادیاں ہوتی تھیں، ایک یثرب، ایک طائف، ایک یہ بکہ یا مکہ. یہ بتا دیں گے بکہ کب اور مکہ کب، مکہ کیا جگہ ہے اور مکہ کیا جگہ ہے، بتا دیں گے. ایک مکہ، 3 آبادیاں ہوتی بس. اور یہ مکے کی آبادی بھی کب قائم ہوئی؟ جناب ابراہیم کے آنے کے بعد.
और सदियों तक, कई हजार साल तक यह आबादी नाम तो थी बस, इसमें भी जो बड़े होते जाते थे वो निकलते जाते थे, हिजरत नहीं करते, चले जाते, यहां आबादी नहीं रही। यहां तक कि 1933 तक मक्के की आबादी 20,000 से ज्यादा रखी है, 44,000 बस। अब आप देखिए कि कितने हजार साल पुराना, कम अज कम 5 से 7 हजार साल पुराना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने का जमाना बता रहा हूँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से जनाब इब्राहिम तक का जो जमाना है दरमियान का, ये कहलाता है 5,000 से 7,000 साल का जमाना। तो अब आप अंदाजा कीजिए, इतना लंबा दौर गुजरने के बावजूद यहाँ आबादी, आज अगर आबादी बढ़ रही तो क्यों बढ़ रही, क्योंकि मस्नूई वसाइल बढ़ गए, वसाइल बढ़ गए तो आबादी भी बढ़ गई। अब भी यानी 60-70 साल पहले तक आबादी नहीं थी, महदूद आबादी, 1 लाख भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 1954 या 1955 में जाके इसकी आबादी का सुराग मिलता है, 1 लाख, 1 लाख। और ये 1977 तक ऐसे ही था, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इससे ऊपर आबादी नहीं गई। अब मैंने अर्ज कर दिया क्योंकि वसाइल बढ़ गए, अब पानी भी आ गया, अब मस्नूई सब्जा भी लगा दिया गया, सब चीज़ें हो गई, इमारतें बन गई, तो अब आबादी वहाँ की, तो वो जो पहाड़ी इलाके थे उनमें भी अब तो आबादियाँ होंगी, अरफात के करीब आबादियाँ छू रही हैं। ठीक है, ये आज का तक का, वहाँ से लेकर आज तक की बात। रब बना इन असकन तुम इन जूरियत विवाद इन गैर जरिन इंदा बैत गल मुहर्रम। बात यहाँ से शुरू कि अगर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमा रहे हैं कि तेरे पाक घर मोहतरम घर के हमसाए में अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी जरूरत में से कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मतलब जनाब इब्राहिम के इल्म में है ना कि यहाँ कुछ है, जब ही तो यहाँ लाए हैं, वरना कहीं भी ले जाते ना। कल मैं अर्ज कर चुका मुकदमे की वजह से कहीं भी ले जा सकते थे, यहाँ क्यों लाए? इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह का हुक्म है, नबी अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा। अच्छा भी काम होगा तो पहले अल्लाह की रजा लेगा, अल्लाह की रजा मालूम होगी तो ठीक, वरना क्या होगा, करके औला हो जाएगा। आइए अब आपको लेके जाते हैं जनाब आदम तक। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब जहां तक मजलिस की जरूरत थी, मैंने इसका महले हुकू आपको बता दिया कि क्या है, ये आपको बता दिया। जहां तक मजलिस की जरूरत थी इसका रकबा भी मैंने आपको बता दिया, इसका रकबा कितना है। जहां तक मजलिस की जरूरत है इसका दाएं बाएं शर्क मगरिब शुमाल जुनूब, ये सब मैं कल आपको बता चुका ना, जहां तक मजलिस की जरूरत है। ऐसे बड़ी तफसील है, लेकिन जहां तक मजलिस की जरूरत है हमारे मजमून की, इतना मालूम हो जाए कि भाई ये है क्या, मक्का असल में है क्या, क्या चीज़ है। आइए अब चलते हैं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई। अच्छा, जनाब आदम को जमीन पर हुबूत यानी भेजने से पहले, उतारने से पहले परवरदिगार फैसला कर चुका था ना कि जमीन पर उतारूंगा, इन्नी जायलुन फिल अर्ज़ बनाऊंगा खलीफा, बनाएंगे। अच्छा, अब होता यह है कि हम जो हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं जनाब आदम तक का, वो है 18,000 साल। कितना है? 18, यानी जहां जितना जोर लगा ले 18,000 साल से ज्यादा नहीं है। जे जनाब आदम जिनकी हम औलाद ये सब बैठे हुए, पौने 7 अरब दुनिया में जनाब आदम और जनाब हव्वा की औलाद, ये जनाब आदम 18,000। किसी ने बड़ा रेयर केसेस में किसी ने कहा कि 25,000 साल हो सकता, चाहे हो सकते होंगे, हमें इससे बहस नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जो आसार मिल रहे हैं जमीन से, कोई 10 लाख साल पुराने, कोई 40 लाख साल पुराने, कोई 1 करोड़ साल पुराने, कोई 5 करोड़ साल पुराने, और ये सच है, झूठ नहीं है भाई, यकीन है इस पे हमारा, बिल्कुल ऐसे ही साइंस यहां तक पहुंच गई, ये माहिर अर्जियात यहां तक पहुंच गए, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहलाता है ना, ये जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं जो इसके माहिर होते हैं, वो यहां तक पहुंच गए, उन्हें मालूम है 5-5 करोड़ साल पुराने आसार उन्होंने निकाल ली, तो वही तो 18,000 साल हुए। नहीं, जनाब आदम की बात हो रही है ना आने की, जमीन कब खल्क हुई ये तो नहीं मालूम, हाँ ये मालूम है कि कैसे खल्क हुई, ये हमने आपको बता दिया। ये ऐसे इसका मालूम है हमें कि इसके इशारे नहजुल बलागा में भी मिले, मौला आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात में भी मिले। अच्छा चलिए, अब एक और पहलू से आपसे बात करें। अच्छा ये बताइए कि जमीन जब भी बनी हमें नहीं मालूम, आलमीन है कि नहीं है? जब जमीन करोड़ों साल पुरानी तो आलमीन कितने साल पुराने होंगे भाई? आलमीन है ना? हाँ, अब ये एक और सवाल है। और अभी ताज़ा तरीन जो रिसर्च आई, अभी 15-20 दिन पहले की बात कर रहे हैं, सारे अखबारात में आई थी, चैनल्स पर भी आई थी, मालूम नहीं आप में से कितनों ने देखी कितनों ने देखी, 50 करोड़ नूरी साल के फासले पे एक और कायनात दरियाफ्त हो गई है। मानना पड़ता है। कोई मौलवी कहता था कभी भी नहीं मानता कोई, लेकिन नासा कह रही है तो माना भाई। हाँ भाई होगी होगी भाई, देख उसको देखा है किसी ने? तमाम अनदेखी चीजों में ईमान ले आएगा, बशर्ते कि साइंसदान कहे। अनदेखे खुदा पे ईमान नहीं लाएगा, ये नहीं सोचेगा कि ये आलमीन ये कायनात बनाई किसने। इतना बड़ा आप जानते हैं अथीस्ट, अभी 2009 में उसका इंतकाल हुआ है, एंथोनियो फेलियो, बहुत बड़ा, यानी इसको दहरियों का इमाम कहा जाता था। 50 साल तक दहरियत पे दर्श देता रहा, लेक्चर देता रहा, और बड़े बड़े मनाजरे जीत गया मसीही उलमा से, कोई इसको हरा नहीं सकता था। 50 साल बाद इस पे कश हुआ और उसने किताब लिखी, पहले किताब लिखी थी देयर इज नो गॉड, और 2004 में किताब लिखी देयर इज ए गॉड। क्यों? वही बात जो हम कहते हैं कि वो उसका दिमाग यहां पर आके फेल हो गया कि अगर ये सब खुद ब खुद है तो ये सब आपस में मरबूत क्यों है, ये सब एक दूसरे से, यानी कायनात के नज्म व ज़ब्त। हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, वो तो जाहिर साइंसदान था ना भाई, वो तो बहुत बड़ा साइंसदान माजरत फलसफी था, बहुत बड़ा फलसफी, और इसका फलसफा भी एथिज्म के फलसफे पर वो बाहर था, लेक्चर देता था, दुनिया भर में बुलाया जाता था, लोगों के दीन खराब कर दिया उसने, इतने दलाइल देता था कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। लेकिन आखिर में इस कायनात के नज्म व ज़ब्त ने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया कि कोई है जो इस नज्म व ज़ब्त को बरकरार रखे हुए। अगर ये नज्म व ज़ब्त को बरकरार रखने वाला कोई ना होता तो फिर कैसे वजूद में आ गई कायनात? पहले वो जमीन को देखता था ना, निजामे शमसी को देखता था, एक गैलेक्सी को देखता था, एक क्लस्टर को देखता था, एक सुपर क्लस्टर को देखता था। अब उसने जब देखा कि नहीं, इस कायनात से आगे भी कायनात, उससे आगे कायनात की बात कर रहे हैं, कायनात, ये कायनात ही जो देख नजर आ रही है, खरबा खरब सितारे, एक आलम है भाई, ये सारे आलमीन नहीं है, ये एक आलम है। वो कह रहे हैं इसके बाद वो नहीं, पता नहीं कितनों ने कहा, अभी फिर 15 दिन पहले आ गया कि 50 करोड़ नूरी साल के फासले पर एक और कायनात दरियाफ्त हो गई, एक और कायनात दरियाफ्त। अब 50 करोड़ नूरी सालों को आप तकसीम करें, यानी जरब दे, हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करें कि कितने अरब खरबा खरब साल बनेंगे, यानी कितने खरब मील बनेंगे। अब मीलों का तो कोई हिसाब, का मीलों का हिसाब छोड़ दो, बस ये बता दो 50 करोड़ नूरी साल के फासले दरियाफ्त हो गई इस नज़्म व ज़ब्त। भाई आखिर है क्या, मामला क्या है? आलमीन आलमीन, एक आलम नहीं, आलमीन आलमीन आलमीन। अब देखिए आप, आलमीन जब भी है उनकी बका की कोई इल्लत है कि नहीं है? अब जरा सी मुश्किल गुफ्तगु है, लेकिन इसको संभाल लीजिएगा आप। क्या मतलब? फलसफे में, मंतिक में एक इस्तिलाह इस्तेमाल थे, इलल व मालूल। कोई चीज वजूद में नहीं आती जब तक कोई उसकी इल्लत ना हो, है ना? इल्लत के बगैर कोई चीज वजूद में, ये हमारे सामने है तो इसकी कोई वजह इल्लत है ना, इल्लत गायबी है और इसकी कोई इल्लत भी है, बनाने का मकसद भी है और बनाने वाला भी है। इल्लत गायब यानी बनाने के मकसद, बनाने के वजह क्यों बना, इल्लत गायबी है और एक इल्लत भी है कि क्यों बना और किसने बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, है ना? ये सारी चीजें बहस में आती, लफ्ज़ तफ़सीली बहस में नहीं जा रहे, सिर्फ बता रहे कि इलल व मालूल का ये जहान है, इलल व मालूल का। औलाद वजूद में नहीं आ सकती जब तक माँ बाप ना हो, तो माँ बाप है इल्लत, औलाद है मालूल। इल्लत पहले होती है, मालूल बाद। इतना तो समझ में आ गया ना बच्चों की, बड़ों से बात बड़ों को सब मालूम होगा, मंतिक फलसफा सब पढ़ा हुआ होगा सबने, मैं बच्चों को समझा रहा हूं कि इल्लत पहले होती है, मालूल बाद में आता है। इल्लत पहले, आलमीन मालूल है, आलमीन क्या है? मालूल है। इनकी इल्लत पहले होना चाहिए, बनाने वाला नहीं, नहीं, इल्लत गाइब, क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है। ये मुश्किल मरहले से निकल जाएंगे, सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी आगे की इंशाल्लाह। क्यों बनाया? अभी बनाने वाले की तो बात ही नहीं कर रहे ना, अभी तो कि क्यों बनाया, किसके लिए बनाया। इल्लत गाई, गाई यानी मकसद, इसके बनाने का मकसद क्या है, इसको बनाया क्यों गया है। तो इल्लत पहले होगी ना, जो भी होगी इल्लत पहले होगी। आलमीन मालूम है, आलमीन बाद में वजूद में है, वो इल्लत क्या है? कुरान मजीद ने जा बजा उस इल्लत की तरफ निशाना की, निशानदेही की हमारी, इंसान नहीं समझ पा रहा, कुरान मजीद बार बार बता रहा है। बता रहा है इल्लत, इल्लत पहले होगी मालूम बाद में। अब आलमीन का हमने जरा सा इशारा कर दिया, अब ये करोड़ों साल के हो या अरबों साल के हो हमें इससे बहस नहीं। हम ये जानते हैं कि इसकी कोई ना कोई इल्लत गाई होनी चाहिए कि ये बनाया क्यों गया है। अब आयत और हदीस कुस्सी दोनों गवाही दे दें फिर तो मानेंगे ना आप, क्योंकि फलासफा तो आज बता रहे हैं ना। कुरान की आयत कब आई है? 1400 साल है ना, 1422 और 1400 1435 साल पहले पहली वही आई, ठीक है ना, 1435 साल पहले पहली वही आई है। ये तो हिजरत के बाद है ना, 1422 हिजरी जो चल रही हमारी, 1444 माजरत 1444 हिजरी, इसमें 13 और जमा कर लीजिए तो कितने हो गए भाई, 57 हो गए ना। 1457 साल पहले पहली वही नाजिल हुई है, 1457 साल पहले पहली वही नाजिल। तो कुरान तो वक्त कब का है ना, फलासफा आज बता रहे हैं आलमीन के बारे में ऐसे 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 ऐसे। हमारा सवाल यह कि इसकी इल्लत गाई क्या है, क्यों आया वजूद में, किसके लिए आया वजूद में। इल्लत पहले होगी मालूम बाद में। अब आइए कुरान में इल्लत बता दी गई, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आइए सादा सा मतलब बताएं, इसमें पहले बड़ी तकरीरें की लेकिन सादा सा बता दें आपको, आलमीन के लिए रहमत है किसकी जात, ये रहमत हट जाए तो आलमीन बचेंगे नहीं बचते ना, रहमत इल्लत है ये समझाना चाह रहे हैं। रहमत क्या है, रहमत इल्लत है, आलमीन मालूल है। तबारक अल्लज़ी नज़ल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पे फुरकान नाजिल किया, कुरान नाजिल किया, क्यों, ताकि आपको नहीं, इंसानों को नहीं, जमीन वालों को नहीं, आसमान वालों को नहीं, आलमीन को डराने वाला बने। अब समझ में आए इल्लत किसे कहते हैं, इल्लत। अब आइए हदीस कुदसी, लौला कमा खलकतुल अफलाक, ए हबीब अगर आपको खलक ना करता तो आलमीन ही खलक ना करता। अब मालूम है कि इल्लत गाई क्या है, क्यों खलक की ये आलमीन को, हबीब तेरे लिए खलक कर रहा हूं और तुझे क्यों खल्क कर रहा हूं, अपने लिए खल्क कर रहा हूं। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, समझ में आ रही है बात। तो इल्लत पहले मालूम बाद में, आलमीन का वजूद बता रहा है कि इनकी कोई इल्लत गाई है, किसी मकसद के लिए, किसी के लिए इसको बनाया गया आलमीन को। तो अब यह तय पा गया कि ये जब भी बने हो, जिस जमाने में बने हो, इनके वजूद से पहले नूर मोहम्मद ही खल्क हो चुका था। या अच्छा, अब हमारा मजमा आ गया, गुजारिश करेंगे थोड़ा सा आगे तशरीफ जाइए परवर। एक बार और बुलंद आवाज से एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा, आइए। नहीं मगर अभी जमीन का भी तो देखे ना, एक सवाल तो अपनी जगह है ना, जो भी कहां 18,000 साल और कहां करोड़ों साल पुराने आसार का निकला जाना, फर्क है ना। वो तो हमने एक बुनियादी बात कर दी आपसे, मुकद्दमा एक समझा दिया आपको कि ये मुकद्दमा है भाई, ये इल्लत है, ये मालूल है। लेकिन हर आदमी कुरान को तो नहीं मानता आपकी तरह, हर आदमी हदीस कुदसी को भी नहीं मानता आपकी तरह, हर आदमी हर इंसान हदीस मासूम को भी नहीं मानता आपकी तरह। फिर मसला वो याद है कि ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आपका कहना है ना, हमें तो सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए अकली। और यही मैं हमेशा सबको समझाता हूं कि बात वो कीजिए कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अपने मजमे को राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, दलील उसको कहते हैं कि जो सबके लिए कबूल, माने ना माने लेकिन बात सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आइए 18,000 का मसला, 18,000 साल का मसला कैसे करें, कैसे हल करें, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था क्या नहीं था। अब आइए, जैसे ही परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कालू अतजलु फीहा मैं युफसदु व युस्फिकु दिमा, फौरन मलाइका ने कहा पालने वाले तू उसको बनाएगा, है ना, शुरू में इब्तिदा में सूरह बकरा के आगाज में है ना ये तो आयात। 29, 32, 31, 32, 33, 34 पढ़ते चले जाइए, बल्कि 24वीं से शुरू करेंगे और भी मतलब आपको ज्यादा मिल जाएंगे, 23, 24वीं आयात से शुरू करेंगे सूरह बकरा के, तो सारे मतलब आ जाएंगे। तो अब बताइए फरमाया कि माबूद तू उसको बना रहा है जो रूए जमीन में फसाद करेगा, खून बहेगा। अरे भाई अभी भेजे नहीं, तुम्हें कैसे बता? अभी भेजा कहा है? अभी भेजे ही नहीं, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि फसाद करेगा, खून बहाएगा? तुम्हें कैसे मालूम? और परवरदिगार हम तेरी नहनो नुकद्दसो बिहम्दे नुसब बेहुल लगा, हम जो हर वक्त तेरी तकदीश कर रहे हैं, हम जो हर वक्त तेरी तस्बीह कर रहे हैं, हमें छोड़ दिया तूने, कब से तस्बीह कर रहे हैं नहीं मालूम। इबलीस नाम था इसका अजाजील, पूरी कौम इसकी तबाह हो गई, सबको जहन्नम में डाल दिया गया, ये अपनी इबादत की वजह से बच गया। अब ये कितने लाख साल पुराना वाकया है हमें क्या मालूम भाई, हमें तो नहीं मालूम। उस पूरी कौम में जिस पर कयामतें आई उस पर एक आदमी बचा, एक, ये आग से खल्क किया हुआ एक, कौम जिन, अक्सर क़िसस अंबिया में यही है, कौम जिन में से बचा, ये बचा एक, बाकी सब दबाव बर्बाद हो गए। और ये तो सबसे ज्यादा वो हो गया अजीब, ये क्या बात हुई, इतने अरसे से मैं इबादत कर रहा हूँ, हजारों लाखों साल हो गए सजदे करते करते, फरिश्तों ने ये क्यों कहा? उसे भेजेगा कहा, जमीन की बात हो रही है ना, इन्नी जायलुन फिल अर्ज़े खलीफा, किसी और सैयारी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है जमीन की, कि माबूद क्या तू जमीन पे फिर उसे भेजेगा जो फसाद करे और खुरेजी करे? इसका मतलब कुछ हो चुका था ना पहले, अब ये पहले कब हुआ, कितनी बार हुआ ये नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि छठे इमाम ने फरमाया जब किसी ने पूछा कि क्या इससे पहले कोई आदम था, आपने कहा था, क्या उससे पहले कहा था, 70 बार पूछा उसने, इमाम ने 70 बार कहा जितनी बार पूछता चला जाएगा बताता चला जाऊंगा। अब लगा लीजिए करोड़ों साल, आप अब निकालते रहिए आसार, आप जमीन वही, जमीन वही, जमीन वही। अब आइए आगे चलिए, अब जनाब आदम के सुल्ब में अनवार मुकद्दसा को रखा गया, अनवार का खल्क होना और है, किसी सुल्ब में मुंतकिल होना और है, समझ में आ गई बात? और ये जानता था इबलीस कि सजदा आदम को नहीं है, सजदा उन अनवार मुकद्दसा को है जो सुल्ब आदम में है। सलवात इनायत फरमाइए, सही है ना, बना दिया जब उनका उसको भेजेगा तू, इन्नी आलम माला तालम, परवरदिगार ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्यों? अब मसला ये है ना कि उनको तो नहीं मालूम कि किन की खातिर खल्क किया गया है, किन की खातिर ये मट्टी के पुतले को, गीली मट्टी से मैंने ये पुतला बनाया है, और फिर नफख तो फी है मेर रूही, अपनी रूह में से फूंका, अपनी रूह में से। तो ये बताइए अल्लाह की रूह को फना है? मत डरिए, सीधी सीधी सी बात है कि नहीं, अल्लाह की रूह को फना नहीं है ना, नफख तो फी है मेर, जितनी जगह भी आया है जनाब आदम की तखलीक का किस्सा, हर जगह यही नफक तो फीए में रूई, नफक तो फीए में रूई, फिर हमने इसमें अपनी रूह में से कुछ, सारी रूह नहीं, रूह में से कुछ भूख दिया। तो अब देख, जो अब अल्लाह ने अपनी रूह में से भूखा है तो रूह को फना होगी नहीं, बस इस आले सवाब का एक छोटा जुमला मोतरिजार्ज कर रहे ताकि बात समझ में आसानी से आ जाए, हजारों बार ये पढ़ा हुआ जुमला है हमारा भी दूसरों का भी, लेकिन इस आले सवाब बदन को नहीं होता, बदन को होता है, किसको होता है सवाब? रूह को ही साले सवाब, सलामत रहे आप, समझ में आ गया? वो बदन तो गया मट्टी में, अब वो जो खासान खास है मोमिनीन, परवरदिगार उनके जिस्म को खराब भी नहीं होने देता, ये भी है और हमने आंखों से भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमारा यकीन है इस बात पे कि ना मालूम कितने साल पहले मरा हुआ, इंतकाल किया वो मोमिन, हमने उसकी लाश को तरोताजा देखा है ना, है तो अब इंसान ऐसा बन जाए तो फिर क्या बात है कि जमीन भी अमानत की तरह रखे? नहीं, ये अल्लाह का वो खास बंदा है जिसकी मुझे हिफाजत करनी है, वो जो जमीन की मखलूक है ना उससे भी हिफाजत करना है, वो भी कोई करीब नहीं आ सकता उस जनाजे के जिसको हमने बरसों बाद देखा और बिल्कुल तरोताजा देखा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना, वरना तो भाई, वरना तो कानून यही कि जिस्म गया रूह को इसाले सवाब कीजिए आप, और इसीलिए दुनिया में जहां भी हो करो, कब्र में जाना जरूरी थोड़ी भाई, जो है वो जाए जरूर भाई, नहीं कह रहा हूं नहीं जाओ, जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे अपनी, हमारी यहां कोई बिदत विदत नहीं है, जाओ, क्योंकि सुन्नत रसूल है, सुन्नत अइमा है कि बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ, बल्कि मोमिनीन की कब्रों में जाओ, उनके लिए दुआ करो, आ जाओ, कोई शिरक है ना बिदत है, इत्मीनान रखो, यकीन रखो इस बात पे, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है जनाब। लेकिन अगर कोई किसी और मुल्क में रहता है, किसी और शहर में रहता है, कहां जाएगा, या हर जुमेरात नहीं जा सकता, भाई नहीं जाते, सीधी सी बात है, कहां टाइम है इस जिंदगी में, लेकिन घर में बैठ के तो याद कर सकता है ना, एक फातिहा तो पढ़ सकता है, फातिहा किसके लिए पढ़ रहा है, बराए इसाले सवाब, फला की रूह के लिए, फला की रूह के लिए, क्यों, रूह बाकी, रूह रूह बाकी, जिस्म तो फना हुई, कुल्लो शैन फान, ये जितनी मादी चीजें सब फना हो जाएंगी, रूह नहीं, रूह का सफर जारी रहेगा, रूह का सफर आगे बढ़ता चला जाएगा, रूह का सफर आगे बढ़ेगा। बस अब ये मसला जब हल हो गया तो अब आइए, नफक तो फी है मेर रूही, इसमें अपनी रूह में से फूंका, सामने बनाया था सबके मट्टी का पुतला, कैसे बना क्या बना ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अल्लाह ने बनाया, जब बना दिया तो कहा इसको सजदा करो सारे, फकौ लहू साजदीन, सब के सब मलाइका सजदे में, इल्ला इबलीस, सिवाय वो सजदा नहीं करेगा कभी, बाकी सब सजदा करेंगे, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उसने क्या कहा, उसने कहा खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं इसको सजदा करूं, मैं आला, मैं अरफा, मैं अफजल, मुझे तूने आग से खल्क किया, वैसे तूने मट्टी से, गीली मट्टी से, तीन से खल्क किया, मेरा इसका क्या मुकाबला, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। ये पहला मुकाबला था हसद का, किसका था, यानी बुनियाद ही फसाद की कहां से पड़ी, हसद, 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 हसद हो गई उसको, मुझे मनसब नहीं मिला, इसे कैसे मिल गया। अल्लाह इसी तरह इम्तिहान लेता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा हो, बहुत बड़ा इंसान, उसके मुकाबले में अल्लाह किसी छोटे इंसान को इज्जत दे दे, हसद शुरू, इसको कैसे मिल गया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, शैतान भी बहुत बड़ा, सारे मलाइका में सबसे ज्यादा आबिद था, इबादत गुजार था, सबसे बड़ा आलिम तक कदम मैं जानता हूं ज्यादा, और कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता, यह है शैतान का नारा कि मेरे सामने कोई आलिम नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, बना दिया, फिर बची हुई मट्टी से जनाबे हवा को भी बना दिया, ताकि जनाबे आदम की तनहाई दूर हो सके, और बाद में के पसली से बनाया, खैर कोई झगड़े की बात नहीं, ये तो क़िसस अम्बिया की बातें हैं ना, इसीलिए हम क़िसस अम्बिया के हवाले से कर देते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में ये तफसील तो नहीं है ना, बस ये कि बना दी, दोनों को बना दिया, चाहे उनकी मट्टी से बची हुई बनाया या उनकी पसली से बनाया, इसलिए उन्स, उन्स, इसीलिए नाम क्या हुआ, इंसान, क्योंकि इन दोनों को उन्स के लिए पैदा किया, आदम हव्वा की औलादो समझ लो। हाँ, अल्लाह ने पहला नाम क्या दिया, इंसान, आदम को नाम दिया किसका, इंसान, क्यों, तुझे मोहब्बत के लिए पैदा किया, तुझे उन्स के लिए पैदा किया, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, मैंने तो उन्स के लिए पैदा किया, अल्लाह ने पहला नाम ही इंसान, उन्स है ना, उन्स, अनीस, आनिस, मोनिस, ये सब एक ही मादा है, उन्स के लिए पैदा, पहला नाम दिया इंसान, 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 अल्लाह ने पहला नाम दिया कि हमने तुम्हें उन्स के लिए पैदा किया, एक दूसरे से मोहब्बत करो, दुश्मनियां, दुश्मनियां ना करो, खूनरेजी ना करो, अल्लाह की जमीन पे फसाद बर्पा ना करो, लेकिन नहीं माना तो पहला फसाद किस बात पे हुआ, हसद, हसद हो गई, जाओ काना मिनल काफरीन, और बस ये नहीं बल्कि मेरी दरगाह से, बारगाह से भी निकल जा, रांधे दरगाह कर दिया, हसद ऐसी चीज है, अब देखिए दुनिया में भी हसद का, हासिद अपने आप को हलाक कर लेता है अपने हासिद को नीचा दिखाने के लिए, यह है शैतान का उसूल, अपने आप को उसने जहन्नम में बना दिया, लेकिन आदम को नीचा दिखाने के लिए, दुनिया में भी यही है, हसद का अंजाम बड़ा भयानक होता है, हासिद खुद अपने पैर पे, क्यों, हासिद ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा बन जाऊं, हासिद ये चाहता है कि इसको गिराऊं, इसको इज्जत क्यों मिली, इसका नाम क्यों हुआ, मशहूर क्यों हुआ, लोग इसका नाम क्यों लेते हैं, एक मौलवी के सामने दूसरे मौलवी की तारीफ करके देख लो, معذرت کے ساتھ، علماء حضرات ناراض ہو جاتے ہیں ہماری ان باتوں پہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ. اچھا چلیے بھائی، اچھا چلیے بدل دیتے ہیں. ایک بڑے ڈاکٹر کے سامنے ایک بڑے ڈاکٹر کی تعریف تو کر دو ذرا، ایک بڑے وکیل کے سامنے بڑے وکیل کی تعریف تو کر دو ذرا. جہاں علم ہے، علم کی سب سے بڑی مصیبت ہے حسد. حسد کے 9 حصے علم میں رکھے ہیں، حسد کے 9 حصے علم، اور جو اس بلا سے بچ جائے سمجھ لو کہ پلے سراج سے گزر گئے. حسد نہ لاؤ دل، حسد نہ لاؤ. جب حسد آنے لگے جس کے لیے، اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزت دے گا. رشک کرو، رشک رشک کرو، حسد نہ کرو. رشک کیا ہے؟ اچھا عالم، اچھا ڈاکٹر، اچھا انسان نظر آیا، فوراً دل کہتا ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ، کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش جیسا انصاف کا بیٹا ہے میرا بیٹا بھی ایسا ہو جائے. یہ کیا ہے؟ رشک. یہ گناہ نہیں ہے. ویسا اچھا بننے کی تمنا کرنا گناہ کب ہے؟ لیکن نہیں، حاسد کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا بن جاؤں، کہتا ہے یہ کیوں پہنچا، اس کی تعریف کیوں. لہذا جھوٹی سچی تہمت لگاؤ. آج کل سب سے آسان حربہ کیا ہے؟ تہمت. کسی پر بھی جھوٹی تہمت لگا دو، ہے نا. اور سوشل میڈیا کے دور میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ تہمت لگانا. اب تو ماشاءاللہ وہ لپ سنک بھی شروع ہو گئی نا. اچھا میں خود حیران ہوا، میں نے کہا بھائی یہ آدمی تو یہ بات نہیں کر سکتا ہی کیسے. معلوم ہے کہ نہیں، کسی نے پوری کلپ بھیجی کہ بھائی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، انہیں ایک لفظ کہیں کا، ایک لفظ کہیں کا، ایک لفظ کہیں کا ملا ملوک ہے. جیسے آج کل آپ تو اسے زیادہ جانتے ہیں، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حسد. حسد کس کی تعریف کیوں ہوئی؟ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ زیادہ اس پہ تہمتیں لگاؤ، اس پہ الزامات لگاؤ، اسی شخصیت کو ڈیمیج کر دو. حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ حاسد اپنی قبر خود کھود رہا ہوتا ہے. جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے دنیا اس پہ ساری تہمتیں لگا دے. جناب زکریا پہ تہمت نہیں لگی، معاذ اللہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پہ تہمت نہیں لگی، لیکن تہمت لگانے والے کہاں گئے، کدھر گئے، کوئی جانتا ہے؟ وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں، وہاں سڑ رہے ہوں گے، لیکن جناب مریم قیامت تک کے لیے سلام اللہ علیہا. یعنی ساری دنیا ایک طرف، مریم آپ فکر نہ کیجیے. وہ تو کہتی تھی نا کاش زمین پھٹ جائے میں سما جاؤں، یہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور مشیت کہتی کہ نہیں، ان اللہ اصطفا کی و طہرا کی و اصطفا علی نساء العالمین. آپ مطلب پوری دنیا کچھ کہتی رہے، ہم آپ کی عزت اور عصمت کے ذمہ دار ہیں، مشیت کہہ رہی ہے، سمجھ گئے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جس پر الزام تو مت آئے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے. تو اب ہے نا، حسد 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 کیا کرے؟ جنت میں جگہ مل گئی، اس کے جن سے حسد کرتا ہے ان کو کہاں جگہ مل گئی؟ جنت میں. کہتے نا شیطان نے بہکایا، اور بعض لوگ بس اللہ بس کیا بتاؤں، پھر وہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جناب آدم پر معصیت کا الزام لگانے سے پہلے تھوڑا سا غور تو کرو، تھوڑا سا پڑھو تو صحیح. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. عصمت انبیاء پہ انگلی نہ اٹھاؤ. بس بہت پیار سے عرض کر رہا ہوں، آج کل یہ پیار سے کہنا بھی بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن پیار سے عرض کر رہا ہوں کہ عصمت انبیاء پہ انگلی مت اٹھاؤ. سنیے کیا ہوا. جب جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی جناب آدم علیہ السلام سے، اب یہ وہی قصص انبیاء کی بات ہے، یہ کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے بھائی، میں نے عرض کر دیا ما قبل کی تاریخ کی بات ہے. جب موسیٰ جناب موسیٰ گئے، جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی یہاں سے جانے کے بعد اس زمانے میں، اور ظاہر کے روایات پھر نقل ہوتی رہیں، تو ملاقات ہوئی تو جناب موسیٰ نے سوال کیا جناب آدم سے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ نے کیوں اللہ کے حکم کی، حکم عدولی کی، جو آج عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا حکم عدولی کی، حکم عدولی کی اس کی سزا ملی. ایسا نہ کرو نا، ایسا نہ کرو. جناب آدم پہ یہ تہمت نہ لگاؤ حکم عدولی. اب سنو جناب آدم نے کیا کہا جناب موسیٰ سے، جانتے ہیں، اے موسیٰ اے میرے بیٹے، بیٹے ہیں نا بھائی، جناب آدم کے دو بھی بیٹے، اے میرے بیٹے تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا. جناب موسیٰ کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے کیا ہوا، آپ بتائیے. جناب اب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور وہی بات بالکل عقل کے قریب ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. अच्छा बेटा, ए मेरे बच्चों, कल से मैं कह रहा हूँ अपने मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल से ना बनाना, ये बन रहा है ना, ये आप लोगों को सब दे देंगे अपने। बेटा मेरी तरफ देखें, आप मोबाइल में खेलने लगते हैं, मुझे उलझन होने लगती है। अब आइए, अब आपकी खिदमत में अर्ज करें। जनाब आदमी ने कहा, देखो हम जन्नत में थे ना, अल्लाह ने मना कर दिया इस दरख्त के करीब नहीं जाना, हम नहीं जाते थे ना, मैं उस दरख्त के करीब जाता था ना हव्वा उस दरख्त के करीब जाता था, शैतान सांप की बोली बोलता हुआ हमारे पास आया। ये तो आप जानते ना कि सांप की सूरत में गया था, अभी मोर के पैरों में लिपट कर नीचे उतरा है, तो बेचारा मोर जब अपने पैरों को देखता है तो शर्मा जाता है। बहरहाल अब ये कहावतें हैं, हिकायतें, इसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन वो बात जो बता रहे हैं जनाब आदम की, क्या आया और उसने कहा, आदम वो तुम्हारी वो जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था वो तुमसे उठा ली, पाबंदी उठा ली गई, अब तुम इस दरख्त के करीब जा सकते हो। उनका नहीं, अल्लाह का हुक्म है मैं नहीं जाऊँगा। जनाब हव्वा के पास आया, उन्हें समझाया, भाई अल्लाह ने पाबंदी उठा ली, जाएं खाएं, अच्छा तोड़िएगा नहीं, तोड़ने को मना किया अल्लाह ने, नीचे जो गिरा हुआ वो खा लीजिएगा, है ना, तोड़िएगा नहीं, शाखों को नहीं हिलाइएगा, जो नीचे गिरा हुआ वो तो खा लीजिए, उसको खाने में क्या, उसको थोड़ी मना किया, जमीन पे पड़ा हुआ है, अल्लाह की जमीन है ना, जैसे हमारे बच्चों को कुछ मिल जाएगा अल्लाह की जमीन से मिला है। सलावत भेजिए मोहम्मद आलम मोहम्मद, ये तो अल्लाह की जमीन से मिला है, हमें तो अल्लाह की जमीन से मिला है, अब तो उठा के खा लेंगे, नहीं फिर भी नहीं माने, इसने कसम खाई। जनाब आदम फरमाते फिर उसने हमारे सामने कसम खाई कि अल्लाह की कसम अल्लाह ने पाबंदी उठा ली, और उसकी दलील यह कि देखो जब तुम इस दरख्त के करीब जाओगे अगर पाबंदी होती तो फरिश्ते तुम्हें रोक देंगे, फरिश्ते ना रोके तो समझ लो पाबंदी नहीं है। अब आदम कहते हैं कि मैंने झूठी कसम सुनी नहीं थी, ये थी पहली झूठी कसम, ये था, इसीलिए हम कहते हैं तर्क औला, मासियत नहीं की अल्लाह के बंदो, गुनाह नहीं किया आदम ने, खता नहीं की, आदम मासूम था, आदम के सामने पहली बार किसी ने झूठी कसम खाई वो भी अल्लाह की, जब अल्लाह की कसम खाई तो अब जनाब आदम और हव्वा डर गए कि अल्लाह की कसम खा रहा है, यानी अब उल्टा हो गया, अब ये समझे कि ऐसा ना हो कि हम अल्लाह की कसम पे एतबार ना करें और हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब हव्वा ने उस वक्त कहा जनाब आदम से कि ये कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है, तो अब तो हमें चख लेना चाहिए इसका जायका कैसा होगा। हैं कहते अंगूर का जायका था, कोई कहते नहीं सेब का, कोई कहते अनार का, मासूम से भी पूछा, पांच इमाम से किसी ने पूछा कि वो क्या था, अंगूर का था या सेब का था या अनार का था, दरख्त उनका अंगूर का भी था, अनार का भी था, सब फलों का था, इल्म का भी था, एक दरख्त में सब, कहाँ आका एक फल में एक दरख्त में सब कुछ था, क्योंकि उसके खाने के बाद ही तो चीजें कश्फ हुई ना, चीजें कश्फ हो गई, हिजाब उतर गया, वो जो जन्नत का हिजाब था वो उनसे उतर गया, चीजें कश्फ हुई, तो अभी जब कसम खाई मेरे सामने झूठी और हव्वा के सामने, तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, हम ये भूल गए थे कि अल्लाह ने जब पाबंदी लगाई तो अल्लाह ही हटाएगा, हमने उसकी कसम पे एतबार किया, हमने उसकी, क्योंकि हमने हमारे तस्वुर ही तक किसी ने कसम नहीं खाई थी, अभी झूठी कसम वो भी अल्लाह की, अब समझना कि पहली अल्लाह की झूठी कसम किसने खाई, शैतान ने, तो जो झूठी कसमें खाता है वो शैतान की सुन्नत पे अमल किए चला जा रहा है, और खास तौर पे माशाल्लाह अदालतें भरी हुई हैं, सुबह से शाम तक शैतान के चेलों से वो के जो झूठी कसमें खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, भाई अंदर नहीं जाइएगा, चैम्बर के अंदर फंस जाएंगे, फिर आप मुकदमा बन जाएगा आपके ऊपर। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर बार बार, अदालत से बाहर बाहर की बातें करो, अंदर ना जाना चैम्बर में, उधर जाके उंगली उठाओगे तो फिर वो उंगली भी काट दी जाएगी, खबर उंगली कैसे उठाएगी, समझ में आ गई बात। खैर अब चाय में कह रहा हूं अल्लाह एक, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे यही समझ में आएगा कि मेरे मुझे कुछ कहा इसने, पकड़ लो इसको, मुकदमा बनाओ, FIR काटो इसकी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए छोड़िए, कहां चला गया मैं, अब क्या हुआ, खा लिया, वो इल्जाम बेचारी हव्वा पे चला गया, बेचारी कहता हूं मैं उन्हें हमेशा, हर कोई ये कहता है हव्वा ने बहका दिया, हव्वा ने बहका दिया। हालांकि कुरान मजीद ने कहीं भी नहीं कहा कि हव्वा ने बहकाया। कुरान मजीद ने जब बहकाने की बात की दोनों की है, दोनों की बात की। फ़ज़ल्लाहुमा शैतान, इन दोनों को शैतान ने बहकाया। वो सारा आप इल्ज़ाम डाल देते हैं घर की औरतों में, ये बहकाती। हालांकि कुरान कह रहा हूं मैं, जितनी भी जगह आया है फ़ज़ल्लाहुमा शैतान, इन दोनों को शैतान ने बहकाया। अपना इल्ज़ाम डाल देते हो ख़वातीन के ऊपर, बहकाया दोनों को था उसने, जनाब आदम को भी और जनाब अब इन दोनों को बहकाया। लिहाजा अब अल्लाह के ऊपर सब तुम जाओ। खबूत आदम कहलाता है, नुजूल आदम नहीं है, क्योंकि हमें यह मालूम ही नहीं कि कहां से उतरे। नुजूल होता है ऊपर से नीचे आना, हबूत सिर्फ उतरना। अब ये कहां से नहीं कहलाता है, हबूत आदम। इसीलिए जब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हदीस के सामने है ना, इजा हबतल हबता जिब्राइल, हबूत जिब्राइल नाजिल नहीं है, समझ गए बात। नुजूल में और हबूत में फर्क, हबूत आदम, आदम आए, आदम को उतार दिया गया, जमीन पे उतार दिया, जाओ हमेशा तुम्हारी औलाद भी लड़ती रहेंगी, जाओ लड़ते रहो आपस, ये सजा है। हाँ, सिवाय वो जो मेरे खालिस बंदे होंगे उन पर शैतान हावी, क्योंकि उसने इजाजत मांगी थी, इजाजत दे जमीन पे जाओ। लौगयन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम, फबे इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, लौगयन्नहुम अजमईन, सबको बहकाओ, इल्ला इबादत अल मुखलिस, सिवाय तेरे वो जो खालिस बंदे होंगे उन पर मैं हावी, बाकी सबको बहकाऊंगा, जाओ बहका। तेरे साथ साथ जो तेरे साथी होंगे उनको भी जहन्नम में डाल दूंगा। हसद उसको यहां ले आई, जमीन पे उतरे। आदम कहां गए, कहां उतरे, सरांदीप, कहां वो श्रीलंका के पास अब तक है, दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए जाते उस मकाम को जहां हबूत आदम हुआ था। और भी जगहों के नाम हैं, लेकिन मशहूर तरीन क्या है, सरांदीप। ये इसलिए कि आसानी से बात समझ में आ जाए, क्योंकि जाहिर है क़िसस अंबिया की रिवायात में और भी दो चार मकामात के नाम हैं, लेकिन जो मशहूर है वो क्या है, सरांदीप, श्रीलंका के पास, यानी श्रीलंका में एक जजीरा है, अब तो उसका नाम पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन पुराने जमाने में सरांदीप उसका नाम था, वहां पे उतारा गया। एक सलावत पानी दे, चले फिर भी एक दो शेर तो पढ़ ही दूं ना आपके लिए, ताकि इजाला हो जाए। हाकिम शाम, जरा देख तो कुदरत का निजाम, हाकिम शाम जरा देख तो कुदरत का निजाम, तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सज्जाद, तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सज्जाद, गौर से देख तू सज्जाद के कदमों को यजीद, गौर से देख तू सज्जाद के कदमों को यजीद, तेरी बयत के जनाजे पे खड़े हैं सज्जाद। चलिए आवाज फिर खत्म हो गई, आ रही है, मुझे नहीं लग रहा आ रही है, कम हो गई। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, आप सारा खैर जनाब, फिर तसलसल बांधते हैं। जनाब आदम वहां और जनाब हव्वा कहां उतरी, जद्दा, बहरे अहमर के साहिल पर, उसी ने उसका नाम, जगह का नाम जद्दा पड़ गया, क्योंकि हमारी जद्दा ताहिरा वहां तशरीफ लाई जद्दा में। और आज तक जाहिर जब पहली बार गया था गालिबन 87 में, तो वहां कब्रिस्तान तक तो जा सकते थे, लेकिन अंदर जाने की तो आपको पता है इजाजत नहीं होती, तो उस कब्रिस्तान तक होके आया जहां अब तक मशहूर है कि जनाबे हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की कब्रे मुताहर है वहां पे है, लेकिन मैंने नहीं देखी, फिर बता रहा हूं, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, तो बंद है, बाहर जंगल वंगल बना हुआ है। और जद्दा इसीलिए उसका नाम है क्योंकि जनाबे हव्वा सलामुल्लाह अलैहा वहां, और जनाबे आदम कहां, वहां। अब जन्नत से बिछड़ना कैसा मजाक तो नहीं है, तो आते ही गिरिया शुरू हुआ ना, इसलिए बस सुन्नत पड़ गई कि जब इंसान दुनिया में आएगा रोता हुआ ही आएगा, उस आलम से आ रहा है ना, उस आलम से आ रहा है। बार बार जो मासूम बच्चा रोता है वो यही कि मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। जब तक उसकी मेमोरी महव ना हो जाए उस वक्त तक रोता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदि होता है इस दुनिया का, फिर दो ढाई तीन साल के बाद उसकी मेमोरी खत्म, फिनिश, जहां से आया था उसकी मेमोरी खत्म हो गई, अब उसे यहीं का होके रह गया हुआ। अब उससे आप पूछें एक महीने का था तो क्या करता था, मुझे क्या पता क्या करता था, समझ गए ना आप, ये मिसाल है। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम उतरे, रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, 40 साल या 200 साल दोनों रिवायत, जनाब आदम और जनाब हव्वा की जुदाई रही, अकेले वो वहां रो रही है, ये यहां रो रहे हैं, और फिर भी रोने पर एतराज है। खुद ही लिखते हैं कि रो रहे थे, 40 साल रोते रहे, 100 साल रोते रहे, 200 साल रोते रहे, वो भी किसी के इंतकाल पे नहीं, किसी की शहादत पे नहीं, जुदाई पर। माबूद, जब ये रोना वोना सब बेकार काम था तो पहले मरहले में समझा के भेजा होता, देखो रोना मत, पहले बता दिया होता जब भेज रहे तो खबरदार रोना मत। लेकिन नहीं, वो माबूद दुआ ही कबूल नहीं करता जब तक गीली नम आंखों के साथ ना, चश्मे नम होगी तो दुआ कबूल करेगा ना, गिरिया तो दिल की नरमी का एतराफ होता है ना। लिहाजा अभी जनाबे आदम को लेकर चले जनाबे जिब्राइल, जब तौबा कबूली चली है, तौबा हो गई कबूल, आधी यहां आधी वहां चली है, तो सबसे पहले कहां लेकर आए, कोहे सफा। अभी जनाबे हवा से मिलाया नहीं है, कोहे सफा पे लाए। अब इक़्तिसास अंबिया में रिवायत है कि यहां पहले उन्हें हज कराया गया, पहले हज कराया गया, निशान बताया गया कि यह है वो जगह बैतुल मामूर के नीचे, बैतुल मामूर वो अर्श इलाही पे, वो बैतुल मामूर जो असल है, ये काबे की शबी है, ये बैतुल मामूर की, बैतुल मामूर और बैतुल अतीक की शबी है। तो पहली शबी तो खुद अल्लाह ने बनवा दी। अगर नहीं यकीन, अगर नहीं यकीन तो कुरान पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बैतुल मामूर का जिक्र है कि बैतुल मामूर की तस्वीर में हर कोई लिखा गया कि ऐन इस काबे के ऊपर अर्श पे अल्लाह का घर बना हुआ है, जहां करोड़ों अरबों खरबों कोई तादाद नहीं, क्या किसी को मालूम कि जो कौन जाके गिनेगा, का हर वक्त वो तवाफ कर रहे हैं, हर वक्त तवाफ। लिहाजा जब आदम को भेजा तो आदम से भी कहा ऐन बैतुल मामूर के नीचे, यहां ये जो नुक्ता है पहला नुक्ता जहां खुशकी जाहिर हुई थी, ओम ओम ओम, यानी जमीनों की आबादियों की मां, जहां पहला झाग बैठा था पानी के ऊपर, फिर ये झाग खुश्क हुआ, खुश्की में तब्दील हुआ, मट्टी के जर्रे जाहिर हुए, फिर थोड़ी सी और मट्टी बढ़ी, फिर छोटे सी जगह बनी, टीला बनी, कब यही जगह उम्मे तुराब है, क्यों, फिर सारी जमीन यहां से फैलना शुरू हुई, पानी था पहला नुक्ता जमीन का, अर्ज का, तुराब का, कहां पैदा हुआ, ये खाने काबा ऐन जौफ़े काबा कलर्स किया था, कल जौफ़े काबा में ये ऐन जौफ़े काबा, यह है उम उम्मुल अर्ज उम्मे तुराब, बस इसीलिए क्योंकि अली के सिवा ना पहले कोई जौफ़े काबा में आया, ना अली के बाद कोई जौफ़े काबा में आया, वो जगह है उम्मे तुराब, जब अली आए तो अली का लकब हुआ अबू तुराब। अगर जी के जुमला मैंने कल भी अदा किया था, लेकिन आज इसलिए तकरार किया कि बहुत सारे मेरे अहबाब ऐसे हैं कि जो कल तशरीफ नहीं लाए थे, तो ये तोहफा तो ले जाए ना कि उम्मे तुराब क्या है और उसका जवाब अबू तुराब क्या है, मालूम हो जाए ना कि तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं, सिवाय अली के बू तुराब कोई नहीं, तो ये बू तुराब का मतलब। अब यहां पे इस जगह जनाबे जिब्राइल के साथ मिलकर जनाबे आदम ने पहला घर, इन अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, ये है वो पहला घर। बाद मुफस्सिरीन तफ़सीर की पहला घर जनाबे इब्राहिम ने, नहीं जनाबे इब्राहिम ने वुज़िअ लिन्नास इंसानों के लिए, चाहे वो इब्राहिम से पहले के हो, क्या जनाबे इब्राहिम से पहले इंसान नहीं थे, क्या जनाबे आदम की औलाद थे ना सब, तो जब परवरदिगार फरमा रहे इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहा आयातुन बय्यिनात व मक़ाम इब्राहिम, यह वो पहला घर जो हमने लोगों के लिए बनाया, इसी में निशानियां हैं। तो ये पहला घर कब बना, ऐन बैतुल मामूर के नीचे, इस बक्के की सरजमीन पर। बक्का कहते हैं खास उस इला एरिया को, और मक्का कहते हैं पूरे شہر کو, اور تفصیل آئے گی. کل بھی تھوڑی سی بتا چکے ہیں آپ کو, مکہ بکہ ام القرا بلد یہ سارا بتا چکے, لیکن ابھی اور آتا رہے گا بیچ بیچ میں, مائی تقاریر میں آتا رہے گا. سمجھ گئے, عین بیت المعمور کے نیچے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا. طوفان نوح میں اس کی دیواریں گر گئیں, لیکن نشانات تو تھے نا, نشانات باقی تھے. اور ثبوت وہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں لا کے مجلس ختم کر رہے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, نہیں, یہ کب کہا؟ یہ تو نہیں کہا. جناب ابراہیم نے فرمایا بے وادی غیر زیدر اندہ بیت کل محرم, تیرے محترم تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں. کیسے پتا؟ ابھی گھر بنایا ہی نہیں ہے, ابھی تو جناب حاجرہ کو لے کر آئے ہیں, ابھی تو جناب اسماعیل کو لے کر آئے ہیں, ابھی گھر بنا کہاں ہے؟ لیکن جانتے ہیں نا, اور اسی لیے ابراہیم کو بھیجا گیا کہ یہاں جائیے, وہ آدم کا بنایا ہوا گھر, اس کی نشانات موجود ہیں, ان نشانوں پہ کعبے کی عمارت کی تعمیر کیجئے. اس لیے سورہ بقرہ 126 میں آیا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, بلند کر رہے تھے, اونچی کر رہے تھے اللہ کے گھر کی دیواروں کو, کیونکہ بنیادیں پہلے سے موجود تھی, انہی میں گھر کی تعمیر ہوئی. تو یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ جناب آدم علیہ السلام تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے, جناب جبرائیل کی مدد سے. اور اسی جس جتنی جگہ پہ بنانا تھا بیت اللہ اور جتنی جگہ کو حرم رکھنا تھا, تو اللہ نے جھاگ مسلط کیا ابر کی صورت میں, یہ ابر کی صورت میں جھاگ مسلط ہوا. فرشتوں نے اس کو مستقر رکھنے کے لیے, مستقر کرنے کے لیے تنابیں کھینچی اس سے. تو جہاں تک یہ تنابیں کھینچی گئیں وہ سارا علاقہ کہلایا مسجد الحرام. یہ مسجد الحرام کسی بادشاہ نے نہیں بنائی, یہ مسجد الحرام جناب ابراہیم نے نہیں بنائی, یہ وہ پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا تھا. جہاں تک تنابیں گئیں وہ سارا علاقہ کہلایا مسجد الحرام. اللہ کے رسول نے بھی اسی کو باقی رکھا, تمام انبیاء نے اسی کو باقی رکھا. آج تک وہی حدود جو جناب آدم کو بتا دی گئی تھیں, ہاں کچھ عبادتیں بعد میں ضرور شامل ہوئیں جناب ابراہیم کے بعد, جیسے کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا تھا, نرسری پرائمری مڈل, ایسا نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا نئی عبادت یہ کرو, نہیں, یہ تو ایک تربیتی نظام تھا نا, نرسری پرائمری مڈل ہائی انٹرمیڈیٹ, یہی کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, آج کل تو کچھ اور ہی نام ہو گیا اس کا, خیر جناب, اس کا گریجویشن, اور پھر ایک موقع ایسا ہے کہ بس اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. اب سمجھنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہم نے ہادی بھی بھیج دیے, رہنما بھی بھیج دیے. اب تم مانو یا نہ مانو, بولے کل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ہادی. تو اب یہاں تک ہوا کہ پہلے کس نے منایا ہے یہ؟ سب سے پہلے جناب آدم نے. گواہی دے رہے نا جناب ابراہیم کو, اسی پر بنا رہا ہوں, تیرے ہمسائے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ہمسائے کیسے معلوم کہ اللہ کے گھر کا ہمسایا ہے؟ کیونکہ ہے نا, مرکز ہے زمین کا, جوف الارض ہے, یہ مرکز ہے, مرکزی نقطہ ہے جہاں سے زمینیں پھیلی ہیں, اسی لیے نام پڑا ام القرا. اور یہاں کا رہنے والا کیا کہلایا؟ امی. کیا کہلایا؟ امی. مکے کے رہنے والوں کو لوگ کہتے تھے امی آ رہا ہے, یہ نہیں کہتے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہتے تھے کہ ان پڑھ آ رہا ہے, لکھنا نہیں جانتا, پڑھنا نہیں جانتا. عجیب ہے کیا واقعی, میں حیران ہوتا ہوں کیا ترجمہ کر دیتے ہیں, وہ الذی بعث فی الامیین کا مومن. حالانکہ اب آئیے جناب ابراہیم, چلیے اب بہت پھر نیا مطلب ہے شروع ہوگا, آدھے گھنٹہ جائے گا, کل آپ سارے بھاگ جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, بھائی یہی تک رکھتے ہیں. اب اس کا جو مطلب ہے وہ واقعی خاصا طویل ہے, طولانی ہو جائے گا, بھائی یہی پر رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ امی کا مطلب ہے, یہ وہ یاد بھی دلا دیے گا کہ یہاں سے مجھے شروع کرنا ہے, تو پھر بتائیں گے آپ کو امی کی تاریخ کیا ہے, امی کسے کہتے ہیں. آئیے یہاں تک آ گئے, ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اقبال نے یہ طنز کیا تھا, کیا کیا تھا؟ طنز. جب خلافت عثمانیہ جا رہی تھی نا, اور یہ آل یہود آ رہی تھی, وہ کس کی مدد سے آ رہی تھی؟ انگریزی فوجیں لے کر آ رہی تھی, تو اسے طنز کیا تھا تاریخی, کیا کعبے کو کون بچائے گا؟ یہ بچائیں گے. एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है, फिर ये काबे के हिफाजत के लिए आपको नहीं ढूंढ रहे, मुझे नहीं ढूंढ रहे, ये सनम खानों को ढूंढ रहे हैं, ये यहूद और नसारा को ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं ढूंढ रहे, मुझे नहीं ढूंढ रहे, हमसे मदद नहीं, क्यों? मुलुकियत है ना, नाम बदल गए, काम तो वही है, कुफारे कुरैश वाले, क्यों हमसे मदद लेंगे तो मसला हो जाएगा ना, 14 सदियां हो गई हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हुए। अब देखिए अजीब बात, बड़ा खुश था इस्तेमार, मसाइफ से पहले दो जुमले, बड़ा खुश था साम्राज्य, मक्का मदीना कंट्रोल हो गया, भाई जाहिर ना सही है तो उन्हीं का कंट्रोल, हिफाजत के बहाने आगे कि नहीं आगे, हुक्मरानों की बादशाहों की हिफाजत की फौजें उतार दी कि नहीं उतार दी, हम आपको बचाने आए, हमें वो हमने बचाने नहीं आए, वो कंट्रोल करने आए थे कि ये दो मरकज है मुसलमानों के, इनको कंट्रोल कर लो पूरा आलम इस्लाम कंट्रोल हो जाएगा, तवज्जो रही आपकी, बहुत अहम बात है, इन दो मरकजों को कंट्रोल कर लो पूरा आलम इस्लाम कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल कर लिया, उन्हीं की जबान से अपने पिट्ठुओं के जरिए से कहलवा दिया, खबरदार नारा नहीं लगेगा, शैतानी ताकतों के खिलाफ नारा नहीं लगेगा, मुशरिकीन के खिलाफ नारा नहीं लगेगा, बरात अज़ मुशरिकीन नहीं होगी, नमाज पढ़ो जाओ, चक्कर काटो जा, बकरा काटो, दुब्बा काटो, ऊंट काटो जा, अरफात में आराम से सो, खाना पीना सब मिलेगा, जाओ मुतलफा में रात बंटी को सब कुछ देंगे तुम्हें, शोर मत करना, फला 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 को बुरा भला ना कहा, दुआ करते रहना, दुआ करते रहना, अल्लाह ताला मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे, अल्लाह ताला फलस्तीनियों को आजाद कर दे, अल्लाह ताला कश्मीरियों को आजाद कर दे, ये दुआएं करना, इसमें कोई पाबंदी, लेकिन एक चूक हो गई उनसे, एक गलती, एक भूल हो गई उनसे, जानते उन्हीं ने पूरा जोर लगाया गुज़िश्ता 100 साल, कितने 100 साल से भी ज्यादा, लेकिन 100 साल नुमाया है, वैसे तो 150-200 साल पुरानी साजिश है, लेकिन यह कि 100 साल बिल्कुल नुमाया है, पूरे 100 साल एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दो मरकज काबू तो सब काबू, वो भूल गए थे कैसी वजह से कि कभी ये मरकज दुश्मनों के इख्तियार में जा सकते हैं, वो ये भूल गए थे कि इसीलिए हुसैन ने हज के अहराम को उम्रे के अहराम से बदला था कि अगर ये मक्के में नहीं रहने देंगे मैं करबला बना दूंगा, आज इसीलिए 40 को रोकने की साजिश की गई क्योंकि सारी तवज्जो थी सऊदी अरब पर, वो भूल गए थे कि हुसैन भी है, भूल गए, वो भूल गए थे कि हुसैन भी है, हुसैन वो भूल गए थे कि अल्लाह के रसूल ने कयामत तक के लिए कहा है कि मैं हुसैन से हूं, अपने ख्याल में उन्होंने आलम इस्लाम पे कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, वह भूल गए कभी रसूल का लख्त जिगर हुसैन है, हर हुसैन के बाद एक हुसैन, इंसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, आम इंसानों के लिए नहीं कह रहा, अब पर्दे गैबत में जब कौन है, वो मोहम्मद भी है, वो अली भी है, वो हुसैन भी है, इसलिए करबला सबसे बड़ा इनकलाबियों का मोर्चा बन गया, पागल हो गए ये, इसीलिए साजिश कर रहे हैं कि सारी तवज्जो उधर लगाई, करोड़ों अरबों डॉलर उधर लगाया, ये करबला कहां से बीच में आ गई, करबला ही तो है जिसने कल भी इस्लाम को बचाया था, आज भी इस्लाम को बचाएगी, करबला
हमारी दरसगा,
करबला करबला,
कितना आसान हो गया, समझ में आ गया मतलब, क्यों रोकना चाहते हैं मसीह को, क्यों चेहलुम के पीछे पड़े, उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये क्या हो जाएगा, ये कहां से, करबला कहां से, हुसैन है, इसका वादा है, ए मेरे नाना तेरे दीन को बचाओ, लोग समझते सिर्फ करबला में कुर्बानी देके बचा लिए, नहीं, हुसैन का वादा है कयामत तक का, वो पूरा कर रहा है ना। जब दीन पर वक्त पड़ता है, हुसैन ही के चाहने वाले तो मारे जाते हैं। यह है हुसैन का वादा, हर जमाने में हुसैन के चाहने वाले अपने सीने पेश करते हैं इस्लाम के लिए। और वही एहसान फरामोशी, कल भी एहसान फरामोशी की, जिसने कलमा पढ़ाया, जिसने इस्लाम सिखाया, उसी के बच्चों पे छुरी चला दी है ना, उसी के बच्चों, उसी के गले काटे और जश्न भी मनाया, जश्न मनाया। कोई दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। वो होता है ना, लोग कहते हैं कि साहब इससे बड़े बड़े वाकयात, मैं कहता हूँ हाँ हुए होंगे, 1,00,000 मरे होंगे, 1,00,00,000 मरे होंगे, हाँ ऐसा भी हुआ होगा, गले भी काटे गए होंगे, हाँ ऐसा भी हुआ होगा, असीर भी बनाए गए होंगे, हाँ ऐसा भी हुआ होगा कि ख्वातीन को भी कैदी बनाया गया होगा, मान लो ना, मान लो हुआ होगा भाई, लिया हो तारीख से मिसालें। लेकिन एक बात बताओ, तारीख से मिसाल निकाल के बताओ, किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी के बच्चों में छुरियां चलाई, ये बता दो, ये बता दो कि जिसका कलमा पढ़ते हो, 5 वक्त अजान में जिसकी रिसालत की गवाही देते हो, उसके जिगर के टुकड़ों को रौंद डाला करबला में, उनके लाशों को पामाल कर डाला, ये मिसाल लाओ ना कहीं से, ऐसी मिसाल लाओ, किसी उम्मत ने कलमा पढ़ते हुए अपने ही रसूल के बच्चों के गलों पे छुरियां चलाई, खंजर चलाई, तलवारें चलाई, नैजे बरसाए, बर्छियां, ऐसी मिसाल लाओ किसी पैगंबर की उम्मत ने अपनी ही नबी की बेटियों के सरों से चादरें छीनी हो, ऐसी मिसाल लाओ, ऐसी मिसाल, ऐसी मिसाल लाओ किसी नबी की उम्मत ने अपने ही नबी के मासूम बच्चों के रुखसारों पे तमाचे मारे, ऐसी मिसाल कि किसी नबी की उम्मत ने अपनी ही नबी की बेटियों के हाथ पसे पुष्ट बांधे हो और सर बरहना उन्हें बाजारों में फिराते हो, ऐसी मिसाल लाओ ना, ऐसी मिसाल लाओ ना, नहीं मिलेगी ना करबला से पहले ना करबला के बाद। आलम ये था इन बीबियों का कि कहते हैं ना कि सूरज की किरणें भी कभी इनके सर को देख नहीं सकी थी बगैर चादर के, बगैर चादर के सूरज की किरणें भी नहीं पड़ी इनके सर पर। उन बीबियों का आलम यह था कि जब कूफे में काफिला असीरों का दाखिल हुआ है तो कोशिश करती थी कि एक दूसरे के पीछे पड़े, सिपाहियों से कहती थी कि मक्तूलीन के सरों को आगे ले जाओ, हमारे नाकों को पीछे रखो ताकि लोग मक्तूलीन के सर देखने में मशगूल हो जाएं, कोई हमारा चेहरा ना देखे। चेहरे का पर्दा बालों से किया है ना बीबियों ने, क्यों? बहुत वजूहत है, एक वजह मुझसे सुन लो, ये कूफा है, कूफा बरसों रही है यहां जैनब, कूफे की हर औरत पहचानती है जैनब को, अपनी बच्चियों को भेजती थी जैनब के पास पढ़ने के लिए, बिनते अली के पास, बिनते अली उन्हें तालीम देती थी, कैसे उनका सामना करेगी सानिया जहरा, कैसे उनका सामना करेगी जनाब उम्मे कुलसुम। और यही आलम है कि नाकों से बीबियां आवाजें दे रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह मुस्तफा, वाह हैदरा, वाह मुसीबत, नाना देखो आओ तुम्हारी उम्मत ने तुम्हारे बच्चों के साथ किया क्या है। इस आलम में जैनब के कानों में एक आवाज आई, हुसैन हुसैन हुसैन, तड़प उठी जैनब पुश्ते नाकस, देख कोई बीबी है जो हुसैन हुसैन कहती चली आ रही। जब नाके के पास आई तो सानिया जहरा ने पूछा, किस हुसैन को आवाज देती है, किस हुसैन को पुकार दी? वो बीबी कहती है, मेरा बेटा हुसैन कैदियों का तमाशा देखने आया, घूम हो गया, मिलता नहीं, उसे ढूंढते फिर रही। सानिया जहरा ने हसरत भरे लहजे में कहा, जा तेरे हुसैन से मेरे हुसैन का गम नहीं देखा गया, वो घर चला गया, तुझे घर में मिल जाएगा। ये हैरत से देखती है ये बीबी, ये कैदी औरत मुझे खबर दे रही। इसी ताज्जुब के आलम में घर आई वापस तो देखा बच्चा बिस्तर में मुंह दे के रो रहा, तकिए में मुंह दिया, जारो कतार दौड़ के कलेजे से लगाए, मेरे लाल क्या हुआ, तू तो कैदियों का तमाशा देखने गया था ना, आखिर क्या हुआ। वो बच्चा कहता है काश मैं ना गया हो, ए मेरी माँ काश मैं ना गया। अम्मा अच्छा एक बात बता दे, एक बात बता दे, क्या 6 माह का बच्चा जन्मदर्शन था? नहीं मेरे लाल, नहीं कह सकता। अम्मा मैं 6 माह के बच्चे का सर मौके नैजा में देख के आया, मौके नैजा में देख के आया। अम्मा ये बागियों के सर नहीं है, पूछ के मेरे लाल तूने पूछा नहीं किसका काफिला है। अम्मा इसीलिए तो और रो रहा हूं कि मुझे बताया गया कि मख्तूल सबसे बड़ा जो इनका है रहबर है रहनुमा है उसका नाम है हुसैन, इसलिए तो और रो रहा हूं कि उसका नाम भी हुसैन। माँ ने कहा खामोश हो जा बेटा, हमारा हुसैन जानता है ना कौन है, हमारा हुसैन मदीने वाला कौन है जिसके नाम पर मैंने तेरा नाम रखा। तड़प कर कहता बच्चा अम्मा लोग यही कह रहे थे मदीने वाला हुसैन। नहीं मेरे लाल ऐसी बात ना कर, हमारा मौला हुसैन फातिमा जहरा का लाल है, हमारा हुसैन अली मुश्किल कुशा का बेटा है, जानता है हमारा हुसैन रसूल खुदा का बेटा है। बच्चे ने दोनों हाथों से मुंह पीटना शुरू किया, अम्मा तू लुट गई, अम्मा तू बर्बाद हो गई, अम्मा लोग यही कह रहे थे जहरा का लाल हुसैन कत्ल कर दिया गया, अली का लख्त जिगर हुसैन कत्ल कर दिया गया, रसूल का नवासा हुसैन कत्ल कर दिया गया। फिर चादर सर पे डाली, दौड़ती हुई आई नाकों के पास, अब जब हकीकत हाल मालूम हुई नैजों पे सरों को देखना शुरू किया पहचानना शुरू किया, औरती हुई नाकों के पास आती है कैदियों से पूछती है बीवियों तुम में कोई जैनब है, बीवियों तुम में कोई उम्मे कुलसूम है। हर बीवी खामोश, कोई जवाब नहीं देती कि कहीं पहचान ना ली जाए, कोई बीवी जवाब ना देती थी कि कहीं पहचान ना ली जाए। आई सानिये जहरा के नाके के पास, इसी बीवी ने खबर दी थी कि तेरा बच्चा घर में, कहो बीवी मुझे बताएगी कि जैनब कहाँ है, जैनब कौन है। वो बीवी खामोश, का तुझे तेरे हुसैन की कसम बता। अब जैनब से भी ना रहा गया, जरा से बाल चेहरे से हटा कर का भूल गई उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा भूल गई, हमने कहा था ना हम आएंगे कूफे आएंगे मगर तू पहचान नहीं सके। सर पीट पीट कर रोती है उम्मे हबीबा, ए मेरी शहजादी ये क्या। सानिये जहरा फरमाती है छोड़ इन बातों को, अगर हो सके तो घर जा कुछ चादरें लेकर आ जा। दौड़ी दौड़ी घर गई चादरें लेकर आई, अब जो नाकों के ऊपर चादरें फेंकना शुरू की तो वो पहुंची नहीं थी सरों तक कि सिपाही आगे बढ़े और नैजे की अंगियों से उन चादरों को खींच खींच कर छीन छीन कर फेंकना। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लबू।